आमतौर पर ना, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां एक गजब की सटीकता होती है, बिल्कुल एक मशीन की तरह।
हाँ, एकदम स्पष्ट।
बिल्कुल, मतलब अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो दरार बिल्कुल साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बस स्क्रीन पर उंगली रखकर बता देता है कि भाई समस्या यहाँ है।
एकदम बाइनरी होता है ये, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता।
सही कहा। और सच कहूं तो इस स्पष्टता से ना हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है। इंसानी फितरत है ये, हमें चीजें साफ साफ देखनी पसंद है ताकि हम उन्हें अलग अलग खानों में बांट सकें, सही और गलत, काला और सफेद।
लेकिन लेकिन जैसे ही हम प्राचीन इतिहास या धर्म ग्रंथों की दुनिया में कदम रखते हैं, वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है।
एकदम सही। वहां कोई स्पष्ट रेखाएं नहीं होती, हम एक ऐसे परिदृश्य में आ जाते हैं जो बहुत धुंधला है, पेचीदा है और कई बार तो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा होता है।
बिल्कुल, और यहीं पर डॉक्टर रॉबर्ट विनोय और टेड हिल्डेब्रांट जैसे विद्वानों के जो नोट्स हैं वो बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। जब वे जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब का विश्लेषण करते हैं ना, तो वे कोई सीधी साधी धार्मिक कहानी नहीं सुनाते।
हाँ, और ठीक यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी है। हम सिर्फ प्राचीन कहानियों को दोहराने नहीं वाले हैं,
तो आज हम क्या खंगालने वाले हैं?
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराने कानून, भाषा विज्ञान की छोटी छोटी बारीकियां और मानव स्वभाव आज भी कितने प्रासंगिक हैं। आज हम इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक को देखेंगे।
वो कौन सा?
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ईश्वर के लिए अपने ही इकलौते बेटे की बलि देने को तैयार हो गया था।
वही व्यक्ति एक राजा से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी के बारे में सफेद झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाया।
ओह, इब्राहिम की कहानी। उनका पूरा जीवन ही आस्था के सबसे ऊंचे शिखर और इंसानी कमजोरियों का एक असाधारण उदाहरण है। ठीक है, इसको अनपैक करते हैं। जेनेसिस के अध्याय 22 से शुरुआत करते हैं। इसे ऐतिहासिक रूप से अकेदा या इसहाक को बांधने की घटना कहा जाता है,
जहां इब्राहिम को आदेश मिलता है कि वो अपने बेटे की बलि दे।
हाँ, और इस बात की परतें खोलना बहुत जरूरी है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान को जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी का जीता हुआ टिकट दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि वो खुद अपने हाथों से उस टिकट को आग लगा दे।
ये एनालॉजी काफी सटीक है, क्योंकि जेनेसिस के पिछले अध्यायों में ईश्वर ने साफ तौर पर यह वादा किया था कि इब्राहिम का वंश इसहाक के जरिए ही आगे बढ़ेगा।
हाँ, इश्माइल के जरिए नहीं।
बिल्कुल, और यहीं पर वो मानसिक संघर्ष शुरू होता है। जॉन कैल्विन, जो एक बहुत बड़े धर्मशास्त्री रहे हैं, उन्होंने इस पर एक बहुत गहरी बात कही है।
अच्छा, उन्होंने क्या कहा?
उनके अनुसार इब्राहिम सिर्फ अपने बेटे की जान जाने के डर से नहीं जूझ रहा था, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा वैचारिक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वो अटल वादा था और दूसरी तरफ बलि देने का कठोर आदेश। बिल्कुल, और इसी तनाव के बीच इस कहानी में भाषा विज्ञान की एक बहुत ही खूबसूरत बारीकी छिपी है, जो अक्सर अनुवाद में खो जाती है।
कैसी बारीकी?
इस पूरे अध्याय की जो मुख्य धुरी है वो एक हिब्रू शब्द पर टिकी है, जेहोवा जारे। अंग्रेजी में इसे अक्सर ईश्वर प्रबंध करेगा कहा जाता है।
हाँ, ये तो एक बहुत ही आम मुहावरा बन चुका है।
लेकिन अगर हम हिब्रू भाषा की जड़ों में जाएं ना, तो ये शब्द मूल रूप से देखने क्रिया का एक पैसिव रूप है।
देखने का पैसिव रूप मतलब?
मतलब इसका ज्यादा सटीक अनुवाद होगा, पहाड़ पर ईश्वर द्वारा देखा जाएगा या ईश्वर किसी चीज पर नजर रखेगा।
अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अपनी आम बोलचाल में भी तो कहते हैं ना कि मैं ये मामला देख लूंगा। हमारा मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि उसे सुलझाना होता है।
कि ईश्वर प्रबंध करेगा, तो असल में वो कह रहा है कि ईश्वर खुद इस जरूरत को देखेगा और इसे पूरा करेगा।
समझ गया।
और इसी में एक और पहलू है, जब इब्राहिम छुरी उठा लेता है तब ईश्वर उसे रोकते हैं और कहते हैं, अब मैं जान गया हूँ कि तू ईश्वर से डरता है।
यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर ईश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ पहले से जानता है, तो उसे ये बात पहले से क्यों नहीं पता थी?
ये बहुत ही तार्किक सवाल है। विद्वान इस तरह के संवादों को एंथ्रोपोमॉर्फिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
एंथ्रोपोमॉर्फिक, ये क्या होता है?
आसान भाषा में समझें तो ये ईश्वर के कार्यों को इंसानी भावनाओं और भाषा के चश्मे से समझाने का एक तरीका है। जाहिर है, सर्वज्ञानी ईश्वर को इब्राहिम के विश्वास की गहराई पहले से पता थी।
तो फिर ये परीक्षा क्यों?
क्योंकि इंसान बहुत सीमित है, ईश्वर को इंसान से संवाद करने के लिए उसकी ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये परीक्षा असल में ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि इब्राहिम को खुद अपना विश्वास साबित करने के लिए थी।
ये बात तो समझ में आती है, लेकिन चलिए इस दार्शनिक बहस से बाहर निकलते हैं और उस कठोर सच्चाई पर आते हैं जो आज के दौर के किसी भी इंसान को विचलित कर देती है।
आप मानव बलि की बात कर रहे हैं ना?
हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट में ही कई जगहों पर मानव बलि की कड़ी निंदा की गई है, उसे एक जघन्य अपराध माना गया है। तो फिर ईश्वर ऐसा आदेश दे ही कैसे सकता है?
यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस सवाल ने बड़े बड़े जानकारों को दो अलग अलग खेमों में बांट दिया है।
अच्छा, कौन से खेमे?
डॉक्टर वेनोय के लेक्चर में वॉल्टर कैसर और गेरहार्डस वॉस नाम के दो प्रमुख विद्वानों के बीच के वैचारिक मतभेद का जिक्र है।
तो वॉस का क्या तर्क है इसमें? मुझे लगता है कि बहुत से लोग वॉस के इस तर्क से शायद ही सहमत हों। वॉल्टर कैसर का क्या कहना है?
वॉल्टर कैसर इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी पापी मनुष्य पाप मुक्ति के लिए एक विकल्प हो ही नहीं सकता।
तो कैसर का फोकस कहाँ है?
कैसर का तर्क है कि हमें उस आदेश की क्रूरता पर अटक नहीं जाना चाहिए, हमें ईश्वर की दया पर ध्यान देना चाहिए जिसने खुद ही एक विकल्प का प्रबंध किया।
मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या कैसर यहाँ थोड़ी चालाकी नहीं कर रहे हैं?
चालाकी? वो कैसे?
मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना कि कोई आपको एक गहरी खाई के पास ले जाए, आपको धक्का दे दे और जब आप गिरने वाले हो तो आपका हाथ पकड़ ले और कहे कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। क्या वो सिर्फ कहानी के हैप्पी एंडिंग पर ध्यान देकर असल दुविधा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं?
आपकी ये बेचैनी बिल्कुल जायज है और डॉक्टर वेनोय भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैंसर का जवाब पूरी तरह से गले नहीं उतरता।
तो फिर वेनोय का खुद का नजरिया क्या है?
वेनोय इसे नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट के गोलगोथा से जोड़कर देखते हैं, जहां ईश्वर ने अपने ही पुत्र को सलीब पर नहीं बख्शा था।
मतलब वो पुराने और नए नियम के बीच एक समानांतर रेखा खींच रहे हैं।
बिल्कुल, वेनोय समझाते हैं कि इब्राहिम का विश्वास किसी अंधी श्रद्धा पर नहीं था। हिब्रूज की किताब में भी कहा गया है कि इब्राहिम को पूरा यकीन था कि अगर वो इसहाक को मार भी देता है तो ईश्वर उसे मरे हुओं में से वापस जीवित कर देगा।
अरे वाह, मतलब उसे पुनर्जीवन पर इतना अटूट विश्वास था ताकि ईश्वर का वादा झूठा ना पड़े।
हाँ, ये मौत के पार देखने वाला विश्वास था।
अब जाकर ये तस्वीर थोड़ी साफ होती है, लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
वो कैसे?
मतलब जो आदमी ईश्वर के वादे के लिए अपने बेटे की जान लेने को तैयार था, वही आदमी एक राजा से इतना खौफ खा गया कि अपनी ही पत्नी के बारे में झूठ बोल दिया।
आप जेनेसिस 12 और 20 की बात कर रहे हैं ना?
हाँ, मिस्र में और फिर गिरार में इब्राहिम अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताता है ताकि लोग सारा की खूबसूरती देखकर उसे यानी इब्राहिम को जान से न मार डालें।
ये हमें याद दिलाता है कि महान नायक भी अंततः इंसान ही होता है।
लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। अगर हम गणना करें तो मिस्र के समय सारा 65 साल की थी और गरार के समय वो 90 साल की थी।
जी,
अब 65 और 90 की उम्र में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि राजा उसके दीवाने हो जाए?
ये सवाल सदियों से उलझाता रहा है, लेकिन डॉक्टर वेनोय ने इसका जो समाधान दिया है वो बहुत रोचक है। वे याद दिलाते हैं कि उस काल में लोग बहुत लंबा जीते थे। सारा खुद 127 साल तक जीवित रही थी।
तो क्या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी थी?
बिल्कुल, अगर आज जीवन प्रत्याशा 80 साल है और महिलाओं में मेनोपॉज 50 साल में होता है, तो उस दौर में जब लोग 125 साल जीते थे, मेनोपॉज शायद 75 साल की उम्र में होता होगा।
उस हिसाब से 65 साल की उम्र में युवा दिखना संभव है।
हाँ, और वेनोय अपनी पत्नी का एक वास्तविक अनुभव भी बताते हैं, जिन्होंने एक नर्सिंग होम में फ्लोरेंस नाम की महिला की देखभाल की थी जो 114 साल तक जीवित रही थीं।
चलिए ये बात तो समझ आ गई, लेकिन इब्राहिम का वो डर, क्या सच में उस दौर के राजा इतने क्रूर थे कि खूबसूरत महिला के लिए उसके पति को मार दें?
इसका जवाब हमें पुरातत्व विज्ञान से मिलता है। जोसेफ फ्री की किताब है आर्कियोलॉजी एंड बाइबल हिस्ट्री, उसमें मिस्र के पपीरस दस्तावेजों का हवाला है।
उन दस्तावेजों में क्या लिखा है?
उनसे साबित होता है कि फिरौन सचमुच खूबसूरत महिलाओं के लिए उनके पतियों की हत्या करवा देते थे, तो इब्राहिम का डर वास्तविक था।
हाँ, हालांकि धोखा देना सही नहीं था, भले ही सारा उसकी सौतेली बहन भी लगती थी, वो एक आधा सच था।
बिल्कुल,
जब पुरातत्व विज्ञान की बात चल ही रही है तो जेनेसिस 12 का एक बड़ा ऐतिहासिक विवाद भी है,
ऊंटों वाला विवाद।
हाँ, आलोचक कहते हैं कि फिरौन ने इब्राहिम को जो ऊंट दिए थे वो ऐतिहासिक रूप से गलत हैं, क्योंकि उस समय ऊंट पालतू नहीं थे।
इसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। आलोचकों को लगा कि उन्होंने धर्म ग्रंथ में एक बड़ी गलती पकड़ ली है। लेकिन जोसेफ्री के साक्ष्यों ने इसे ध्वस्त कर दिया।
खुदाई में क्या मिला था?
मिस्र में 3000 ईसा पूर्व के ऊँटों की मूर्तियाँ, चित्र, ऊँट की हड्डियाँ और ऊँट के बालों की रस्सियाँ मिली हैं।
हड्डियाँ और रस्सियाँ भी?
जी हाँ, इससे साबित हो गया कि ऊँट उस समय पालतू थे।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब इन ऐतिहासिक विवादों से परे गरार में राजा अभिमेलेक की घटना का इतना महत्व क्यों है?
इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका समय यानी टाइमिंग। जेनेसिस 17 और 18 में ईश्वर एक वादा करते हैं जीवन के समय के अनुसार।
अच्छा।
वैनोए इसकी तुलना दूसरे राजाओं की किताब में एलीशा और शूनमी स्त्री की कहानी से करते हैं। दोनों जगह मूल हिब्रू वाक्यांश एक समान है।
मतलब एक तय समय सीमा।
बिल्कुल। इसका मतलब था कि ठीक एक साल के भीतर सारा बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और गरार की घटना ठीक इसी एक साल के दौरान घटी थी।
ओह, तो अगर राजा अभिमेलेक ने सारा के साथ संबंध बना लिया होता तो इसहाक के असली पिता को लेकर हमेशा के लिए शक पैदा हो जाता।
एकदम सही। इब्राहिम ने अपने डर से बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था, लेकिन ईश्वर ने अभिमेलेक को सपने में डराकर सारा की रक्षा की,
ताकि वादे के बीच यानी प्रॉमिस्ड सीड की सुरक्षा हो सके।
हाँ, ताकि पितृत्व पर कोई सवाल ना उठे।
ये बहुत ही सटीक ईश्वरीय हस्तक्षेप था। लेकिन इससे पहले जब 10 साल तक संतान नहीं हुई थी, तब सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को इब्राहिम को सौंप दिया था।
हाँ, आज के चश्मे से ये घटना बहुत अजीब और शोषक लगती है।
बिल्कुल, आज के समाज में ये तो इंसान का इस्तेमाल करना हुआ ना।
लेकिन अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो हमें उस समय के इतिहास में जाना होगा। वैनोए हमें याद दिलाते हैं कि हम इसे आज के कानूनों से नहीं आंक सकते।
तो उस समय के कानून क्या थे?
वैनोए अपनी क्लास में क्रॉनिकल्स न्यूज ऑफ द पास्ट नाम का एक फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे, जहां वो सारा और हाजरा के केस को हम्मुराबी की विधि संहिता के नजरिए से समझाते थे।
हम्मुराबी का कानून?
हाँ, प्राचीन मेसोपोटामिया और नूजी ग्रंथों में उत्तराधिकार के कड़े नियम थे। कानून के अनुसार अगर पत्नी को बच्चे नहीं होते थे तो वो पति को दासी दे सकती थी।
तो ये कोई मनमानी नहीं थी?
नहीं, ये पूरी तरह से कानूनी और सामाजिक रूप से अनिवार्य माना जाता था। लेकिन शर्त ये थी कि दासी कभी मालकिन की बराबरी नहीं कर सकती।
मतलब वो बस उस समय के कानूनी नियमों का पालन करके ईश्वर के वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल, वे कोई अपराध नहीं कर रहे थे।
तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो साफ है कि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है।
हाँ, ये बहुत बहुआयामी है।
हमने जेहोवा जारे की भाषाई गहराई देखी, ऊँटों के पुरातात्विक साक्ष्य देखे, और मानव स्वभाव को भी समझा कि कैसे महान लोग भी डरते हैं और झूठ बोलते हैं।
और इसीलिए ना क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। हमें किसी भी घटना को उसके मूल ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ में ही देखना चाहिए, आज के मानकों से नहीं।
एकदम सही बात है।
और यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छूटता है।
वो क्या?
अगर इब्राहिम और सारा के इतने बड़े फैसले, जैसे हाजरा को चुनना, हम्मुराबी जैसे तत्कालीन सामाजिक कानूनों से इतने ज्यादा प्रभावित थे, तो जरा सोचिए। आज हम जिन चीजों को अपना व्यक्तिगत और नैतिक निर्णय मानते हैं, उनमें से कितनी चीजें दरअसल सिर्फ हमारी आज की सदी के कानूनी और सामाजिक नियमों की देन है, जिन्हें हम बस बिना सोचे समझे मान रहे हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। जहां हम हमेशा स्पष्टता ढूंढते हैं, शायद हम खुद ही उसी धुंधलेपन का हिस्सा है।